हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आशिका अब अभिमान पर और बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने एआर एम्पायर्स में अभिमान के घर को छोड़ने का डिसीजन लिया। अभिमान भी आशिका से नाराज था, क्योंकि अभी भी वो उसे अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी। उन दोनों के बीच एक अनजानी सी दूरी आ चुकी थी। अभिमान का घर छोड़कर आशिका अभिमन्यु के पास गोवा जा रही थी। वहीं गोवा में अभिमन्यु इशिका के साथ था। इशिका की याददाश्त जाने के बावजूद उसे आशिका याद थी। वो आशिका के आने पर काफी एक्साइटेड भी नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल अभिमन्यु यही चाहता था कि इशिका सिंघानिया मेंशन वापस लौट जाए। ऐश कुछ दिनों के लिए यहीं रहने वाली है, तो तुम उससे कभी भी मिल सकती हो। फिलहाल तुम्हारा सिंघानिया मेंशन पहुंचना ज्यादा जरूरी है, अभिमन्यु ने गंभीर आवाज में कहा। इशिका चौंकते हुए बोली, लेकिन तुम्हारा घर यहीं है और अब तो मुझे सच का पता भी चल चुका है, फिर मुझे सिंघानिया मेंशन जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि नक्श कुछ प्लान कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा के लिए हमारी लाइफ से दूर चला जाए। तुम्हें मेरा साथ देना होगा, अभिमन्यु ने जवाब दिया और फिर इशिका को पृथ्वी का शूट किया हुआ वीडियो दिखाया। पूरा वीडियो देखने के बाद इशिका भी हैरान थी। उसने नक्श के इस रूप के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। नक्श के अलावा प्रणाली का चेहरा उसके लिए पूरी तरह अनजान था। इशिका ने आंखें छोटी करके अभिमन्यु की तरफ घूर कर देखा और कहा, नक्श का समझ आता है, लेकिन ये लड़की कौन है और ये क्यों कह रही है कि तुमने इसे शादी का प्रॉमिस किया था? ऐसे किस किस को शादी का प्रॉमिस किया है तुमने अभिमन्यु राजवंश? सिर्फ एक लड़की को, और वो तुम हो, अभिमन्यु बोला। उसने गहरी सांस ली और कुछ पल रुककर आगे कहा, तुम्हें याद हो तो जब हमारा किडनैप हुआ था तब वहाँ एक और लड़की रहती थी जो थोड़ी पागल सी थी और सबसे ज्यादा गंदी रहती थी। उसके बाल बिखरे हुए रहते थे, वो ज्यादातर हमारे पास आने की कोशिश करती थी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, इशिका ने जल्दी से जवाब दिया। ये लड़की वही है, इसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है और इसे ये लगता है कि बचपन में मैंने जिसे प्रॉमिस किया था वो ये है। सच कहूँ तो तुमसे मिलने से पहले इसने मुझे पूरी तरह यकीन दिला दिया था कि यही वो लड़की है। पूरे 4 साल मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाकर इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी उतनी ही साइको है, अभिमन्यु लाचारी से बोला। अच्छा, तो अब दो विलन्स मिलकर हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? डोंट वरी, मैं सिंघानिया मेंशन चली जाती हूँ और सब संभाल लूंगी, इशिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अभिमन्यु इशिका को अपने आगे का प्लान बताता, उससे पहले इशिका तेज कदमों से चलते हुए अभिमन्यु के पास गई और अपने दोनों हाथ उसकी बाहों में डाल दिए थे। अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए इशिका ने कहा, इतनी आसानी से थोड़ी ना अपने पति को किसी को भी छीनने दूंगी। ये सब तुम पर बिल्कुल सूट नहीं करता है, अभिमन्यु ने हल्का सा हंसकर कहा। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही कोल्ड बिहेव किया जो तुम ज्यादातर मुझसे दूर रहते हो? इशिका ने पूछा। बिल्कुल मिसेज राजवंश, तुम्हें मनाना, प्यार से हैंडल करना और अपने साथ रहने के लिए तैयार करना मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल था। जब देखो डिवोर्स की रट लगाकर रखती थी। अच्छा हुआ ना जो तुम वो पुरानी बुरी आदत भूल गई, अब हम दोनों मिलकर अच्छी यादें बनाएंगे, अभिमन्यु ने इशिका के नाक से अपना नाक टच करते हुए कहा। इशिका और अभिमन्यु एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे, तभी उनके कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। वो रूही थी। उसने जल्दी से अपनी दोनों आंखों पर हाथ लगा लिए थे। सॉरी मम्मा डैड, मैं गलत टाइम पर आ गई, रूही ने अपनी मासूम आवाज में कहा। अभिमन्यु जल्दी इशिका से अलग हुआ और रूही के कमरे से बाहर जाने से पहले उसे अपनी गोद में उठा लिया था। उसने रूही के गाल पर किस करके कहा, आप गलत टाइम पर नहीं आए हो, पर किसी के रूम में आने से पहले रूम नॉक करना चाहिए। लेकिन डैड, उसके लिए रूम लॉक होना भी जरूरी होता है, डोर खुला था तो मैं सीधी आ गई, रूही ने कंधे उचकाकर कहा। अभिमन्यु ने कल इशिका को पुरानी फोटोज दिखाते हुए रूही के बारे में पहले ही बता दिया था। इशिका मुस्कुराते हुए रूही के पास आई और उसे अपनी गोद में लेते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, गलती आपकी डैड की है। अच्छा बताओ, आप यहाँ क्यों आई थी? ये बताने के लिए कि नीचे आप दोनों को दादी बुला रही हैं। दादी ने कहा कि हम सिंघानिया मेंशन जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, रूही बोली। सिंघानिया मेंशन जाने की बात सुनते ही माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा, उसकी परेशानी इशिका समझ सकती थी। मुझ पर यकीन करो, मैं सब संभाल लूंगी, इशिका बोली। अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वे नीचे आ गए। अभिमन्यु ऐसे ही इशिका को सिंघानिया मेंशन में मुसीबत में अकेले नहीं भेज सकता था। उसने वहां की सिक्योरिटी काफी टाइट करवा दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर नक्श इशिका को नुकसान ना पहुंचा सके। इशिका रूही और अभिमन्यु के साथ नीचे पहुंची। अभिमन्यु ने उसे यही समझाया था कि नक्श चाहे उसे कुछ भी कहे, लेकिन उसे नक्श के साथ नहीं जाना है, और साथ ही उसे नक्श को ये भी यकीन दिलाना था कि उसे अभिमन्यु पर भी शक है। हालांकि अभिमन्यु के इस प्लान के वसुधा पूरी तरह खिलाफ थी। वो अभिमन्यु से बोली, तुम उस लड़के को ऐसे ही सबक सिखा सकते हो, फिर बेवजह मेरी बहू को चारा बनाकर उसके आगे डालने की क्या जरूरत है? जरूरत है दादी, अनफॉर्चुनेटली नक्श ने अपना सब कुछ काम लीगल रखा है और उसका रिकॉर्ड भी क्लियर है। मैं ऐसे ही उसे जेल नहीं भिजवा सकता हूँ, सिर्फ एक वीडियो प्रूफ काफी नहीं होता है,
ऊपर से इसमें नक्श और प्रणाली का चेहरा भी सही से नहीं आ रहा। नक्श को ट्रैप करने के लिए हमें उसके हिसाब से चलना होगा, अभिमन्यु बोला। इशिका समझ गई थी कि अभिमन्यु क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे नक्श को इस हद तक गुस्सा दिलाना था कि वो उसे नुकसान पहुंचाने पर आ जाए, पर हाँ, उसके कुछ करने से पहले ही उसे इशिका को भी प्रोटेक्ट करना था। वो नक्श के स्वभाव को अच्छे से जानते थे। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। अगर ऐसे में इशिका उसकी बात नहीं मानती तो वो जरूर अपने पागलपन में कुछ गड़बड़ करने वाला था। अभिमन्यु ने इशिका और रूही को पृथ्वी के साथ सिंघानिया मेंशन भेजा। वहीं उनके जाने के कुछ देर बाद आशिका राजवंश विला पहुंची। मैं बस तुम्हारे ही आने का वेट कर रहा था, अभिमन्यु ने मुस्कुराकर कहा। इशिका ठीक है ना मिस्टर राजवंश, आपने मुझे कॉल पर बताया नहीं, लेकिन आपको मुझसे क्या काम है, आशिका बोली। पहले अंदर चलो फिर सब समझाता हूँ, अभिमन्यु ने जवाब दिया। आशिका अभिमन्यु के साथ अंदर आ गई थी। अभिमन्यु ने पहले ही उसके काम करने की सारी तैयारी करवा रखी थी। एक कमरे में छोटी टेकलैब तैयार की गई थी। वहां आते ही अभिमन्यु बोला, ये कंपनी न्यूयॉर्क में है, नक्श इसका सीईओ है। बाहर से डेटा एनालाइज करने पर यही लगता है कि सब कुछ लीगल है और कोई गड़बड़ नहीं। ये एक फार्मा कंपनी है। क्या लगता है यहाँ प्रोड्यूस होने वाले सभी ड्रग्स पूरी तरह सेफ हैं? मुझे बस एक छोटा सा सबूत चाहिए। लगता है आजकल सबको दूसरी कंपनी का प्राइवेट डेटा और सिक्योरिटी हैक करने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। ये पूरी तरह इलीगल है मिस्टर राजवंश, पकड़े जाने पर आपके और मेरे दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, आशिका ने अभिमन्यु को समझाया। अभिमान भी उससे कुछ ऐसा ही काम करवा रहा था। मैं जानता हूँ पर इशिका की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मेरे लिए काम कर दो, अभिमन्यु ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। इशिका का जिक्र होते ही आशिका मना नहीं कह पाई और उसने काम करने के लिए हाँ कह दिया था। वो अभिमन्यु के बताए हुए काम पर लग गई थी। वहीं इशिका भी सिंघानिया मेंशन पहुंच गई थी। दूसरी तरफ मुंबई में आशिका के घर पर उसकी शादी की रौनक लगी हुई थी। अभिमान डिस्चार्ज हो गया था और वो पूरी तरह से ठीक था, इस वजह से शादी को पोस्टपोन नहीं किया गया था। सब काफी खुश थे और हल्दी की रस्म की जा रही थी। इन सबके बीच आशुतोष परेशान से खड़े दूर से आशिका को देख रहे थे।
काजल उनके पास पहुंची और बोली, आप यहाँ अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हैं? आज हमारी आशी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्या आप उसकी शादी की पहली रस्म नहीं करेंगे? पता नहीं क्यों इस शादी के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा है काजल, आशी की खुशी के लिए मैंने हाँ कह दिया था, पर अभिमान उसके लिए किसी तरह से ठीक नहीं है। ऊपर से कल वो लड़की, आशुतोष बोलते हुए बीच में रुक गए थे। वो काजल को ये नहीं बता सकते थे कि कल उन्होंने तृप्ति की बेटी आशिका को अभिमान के पास देखा था। कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं आप? कहीं वो बदतमीज़ लड़की तो नहीं जो कल अचानक से अभिमान के रूम में घुस आई थी? काजल ने हैरानी से पूछा। आशुतोष ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। वो कुछ पल रुककर बोले, याद है एक बार आशी रोते हुए घर आई थी और उसने कहा था कि उसने अभिमान को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा था? न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि वो दूसरी लड़की वही होगी। ऊपर से मुझे उस पर यकीन नहीं है। यकीन तो मुझे भी नहीं है, पर बस यही उम्मीद है कि शादी के बाद दोनों बच्चों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। चलिए साथ में आशी की हल्दी की रस्म निभाते हैं, काजल ने आशुतोष को समझाया और उसका हाथ पकड़कर उसे आशी के पास लेकर गई। आशी ने रस्म के लिए पीले रंग की सिंपल साड़ी पहनी हुई थी और साथ में सफ़ेद फूलों की ज्वेलरी। उस सिंपल से लुक में भी वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। हालांकि आशी यही चाहती थी कि हल्दी की रस्म राजवंश मेंशन से हो, लेकिन अभिमान ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। उसके पास अपनी बीमारी का अच्छा बहाना था। आशी को हल्दी लगाते हुए आशुतोष ने नम आँखों से कहा, ईश्वर तुम्हारी ज़िंदगी में सभी खुशियाँ दे और तुम्हारे ऊपर कोई भी दुख आए तो वो तुम्हारे बजाय हमें दे दे। आई लव यू डैडा, आशी ने मुस्कुराकर कहा। आशुतोष और काजल भर भर के उसे दुआएं दे रहे थे। आशी ने एक नज़र सिंघानिया मेंशन की तरफ देखा। सब कुछ काफ़ी लैविश तरीके से किया हुआ था और सब उसकी पसंद के हिसाब से। आशी हल्का सा मुस्कुराई और मन ही मन बोली, कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों का नाम एक है लेकिन किस्मत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फ़र्क हमारे जन्म के साथ ही तय हो गया था, लेकिन किस्मत देखो आज तुम मेरी ज़िंदगी बिता रही हो आशिका सिंघानिया, और मैं तुम्हारी। तुम्हारे पेरेंट्स मुझे इतना प्यार करते हैं कि गलती से भी मुझे दुखी नहीं देख सकते, और तुम्हारा पति भी अब मेरा होने जा रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा तृप्ति बजाज है, जिससे तुम चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। मैं हमेशा खुश रहूंगी और तुम अपनी बर्बादी को चाहकर भी नहीं रोक पाओगी। आशी को मन ही मन अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। होता भी क्यों नहीं, उसकी लाइफ इतनी परफेक्ट जो थी। हल्दी की रस्म होने के बाद आशी अपने कमरे में नहाने के लिए गई थी कि तभी मानसी उसके पास आई। मानसी ने उसे कसकर गले लगा लिया था। वो बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, कल शाम शादी के बाद पूरी तरह अभिमान राजवंश तुम्हारा हो जाएगा। बिल्कुल, आशी ने प्राउड स्माइल के साथ कहा। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन उसे शादी का गिफ्ट देने के बारे में कुछ सोचा है? माना उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आशी सिंघानिया भी किसी चीज़ में कम नहीं है, मानसी ने उससे अलग होकर पूछा। वैसे तो उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मैं खुद हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि उसे एक लग्जरियस कार गिफ्ट कर दूँ। मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, बुक करवाने में मेरी हेल्प करो, आशी बोली और उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। उन्होंने स्क्रीन पर काफ़ी सारी लग्जरियस गाड़ियाँ देखी और उनमें से एक ब्लैक गाड़ी सेलेक्ट करके अभिमान के लिए बुक करवा दी थी। आशी की तरफ से गाड़ी बुक होते ही सामने से कंपनी का कॉल आया। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ बने रहने के लिए। आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी आईडी और बाकी जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। मैं आपकी विजिट कब बुक करूं? सामने से एक लड़की की आवाज़ आई। मैं खुद नहीं आ सकती हूं, इसलिए मैं आपको अपनी आईडी और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट मैसेज कर देती हूं। आशी ने जवाब दिया। आशी ने कॉल पर ही अपनी आईडी और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट भेज दिए थे। उस लड़की ने उन्हें चेक किया और बोली, बाकी सब ठीक है मैम, लेकिन हमें एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर चाहिए होगा। आप मेरी आईडी पर रजिस्टर्ड मेल और नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आशी ने जवाब दिया और कॉल कट कर दिया था। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन अभिमान इस गाड़ी को देखेगा तो सच में खुश हो जाएगा। ये लेटेस्ट एडिशन है, मानसी ने हंसकर कहा। आशी भी बहुत खुश थी। उसने अभिमान के लिए इतना अच्छा गिफ्ट जो सेलेक्ट किया था, पर अपनी खुशी और जल्दबाजी में अनजाने में उसने अपनी आईडी के बजाय आशिका की रियल आईडी भेज दी थी।